श्रीमद् भागवत के गत सत्रों में आपने नारकी लोकों के बारे में सुना होगा और इस पंचम स्कंद के 26वें अध्याय का 7, 8, 9 और 10 चार श्लोकों पर व्याख्या करनी है, तो हम इस पर प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने के लिए। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये नरकी लोकों के विषय में क्यों हमें बताया जा रहा है। तो पहले आप थोड़ी सी चर्चा इसकी श्रीमद् भागवत में जो व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से राजा परीक्षित को बताया था उसको हम दोहराने का प्रयत्न करेंगे और इसके बाद में हम प्रभुपाद जी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि इसमें किस तरह से हमें भागवत का श्रवण से क्या लाभ होता है। श्लोक काफी बड़े हैं तो आप लोग खाली सुन लीजिए और इसका मैं एक बार पढ़ के अनुवाद करूंगा। 10वां श्लोक का फिर पूर्ण व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तत्र है के नरकाने कनुवंशति गणयन्ति यत्ततास्ते राजनामा मरुण लक्षण तो क्रमी मिश्य मत्स्त्रो अंधास्त्रो रौरव महारौरव कुंभिक कालसूत्र पत्रिवंशनम शूकर मुख मधुकूप कृमि भोजन संदस स्पष्ट सूर्मी वर्जकंटक स्माल्मी वैतरणी पुयोद प्राणरोधो विशासनम लालाभक्ष सारेयादीचीर्य पनीमिति किश्च सार्देदमो रच्छ गणो भोजन शूल प्रोतो दंदसूको वट निरोधन पर्यात्न शुचि मुख मिथ्याविष्ट निरता नरका विधि विद्यात्ना भूमय। कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं जो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्तश्रूमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विससन, लालाभच, सारमेयदान, अविची, अयापान, क्षारकर्दम, रच्छोगढ़ भोजन, शूलप्रोत, दंदसुख, अवंट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूची सुख। ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। अगला श्लोक है, तत्र यस्तु परिवित्ता पत्यकल्पत्रायणी परिति स ही कालपाशबद्धो यम रूप परिस्ति ब्यान अनकैस्तानि मिस्त्रे नरके बालनी पात्यते अनसन्नादुपान दंड तांडन सर्त जनार्दि भिर्या अर्थन्यानी भिर्यात्मानो जंतु यत्र कस्मलम असादित एकदैव मूर्छा पुयन्ति ताम रिस्मरित प्राये। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी संतान या धन का अपहरण करता है उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। अगला श्लोक है, एवमेवान्धास्त्रे यस्तु वांछित वा पुरुषम दारिद्र्येन पुयंगे यत्र शरीरी निपात्मानो यातनास्थो वेदनाय नष्टमतीर्ण तृष्ट भवती यथा बनमिस्त्री पृश्यत मानुमूलमस्त्यान अन्नमस्ताद धनिमिस्त्रम तामुदस्यन्ति। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है वह अंत तामिस्त्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे हुए वृक्ष जैसी होती है। अंध तामिस्त्र में पहुंचने की पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह बुद्धि और दृष्टि दोनों ही खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान जन इस नरक को अंध तामिस्त्र कहते हैं। और दसवां श्लोक है, यास्ति युवा एतदहमीति मामेदमीति भूतद्रोणे केवलम स्वकुंड दामेदनानुदीनम प्रभु प्रश्नाति सदमी विहाय स्वमेव तादु सबेमने रौरे नीपतति। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है और अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है, ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्म फल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। अब इसका तात्पर्य हम जो प्रभुपाद जी ने दिया है उसको पढ़ेंगे एक बार। तात्पर्य श्रीमद् भागवत 10:84-13 में कहा गया है कि यसात्म बुद्धि कुल्पे त्रुधा के स्वदी कलाद्री सुभयमी दियदि यथीर्थ बुद्धि सलीले न करचित जनेषु भिक्षु स एव गोखर। इन तीन जो तीन तत्वों पित्त कफ और वायु से भरे शरीर रूपी थैले को स्व मान लेता है, जो अपनी पत्नी और पुत्रों से घनिष्ठता पूर्वक बंधा रहता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करता है, किंतु जो वास्तविक ज्ञानी पुरुषों से लाभ नहीं उठाता वह गधे या गाय के तुल्य है। दो प्रकार के पुरुष जीवन की भौतिकता में मग्न रहते हैं। प्रथम प्रकार के पुरुष अज्ञानतावश अपने शरीर को स्व मान लेते हैं, अतः वे निश्चय ही पशु तुल्य स एव गोखर। किंतु दूसरे प्रकार का पुरुष न केवल अपने भौतिक शरीर को स्व मान लेता है, बर अपने शरीर पालन के लिए नाना प्रकार के पाप करता है। वह अपने परिवार के लिए और अपने के लिए सबों को ठगता है और अन्यों से अकारण ईर्ष्या करता है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। यदि कोई अपने शरीर को ही पशुओं की तरह स्वयं मानता है तो वह अधिक पापी नहीं होता, किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वृथा ही पाप कर्म करता है तो उसे रौरव नरक में रखा जाता है। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। यद्यपि पशुओं में जीवन के प्रति देहात्म बुद्धि है, किंतु वे अपने शरीर अपने जोड़ों या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते, इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करता है और अपने शरीर पालन के लिए अन्यों को ठगता है तो उसे नारकी अवस्था में रखा जाता है। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। जय श्री गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। तो शुरू में जैसा मैंने बताया कि हम लोग जो है ये नरक लोगों के या नरक नारकी लोगों के विषय में जानने की हमें आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यकता है इसकी। तो इस संसार में जो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हम इस संसार में जन्म लेते हैं और हर प्रकार के मनुष्य यहाँ पे देखते हैं, और हर प्रकार के मनुष्यों में जितने भी जीव हैं, पर मनुष्यों में अगर हम लें तो इसमें भी देखिए कितने प्रकार के मनुष्य हैं। सबसे पहली मोटे मोटे शब्दों में अगर हम लें तो एक भक्त है और एक अभक्त है, नॉन डीओटी और डीओटी। तो जो भक्त हैं वो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो हमें नारकी विषय में या इस विषय में क्यों सोचना। आप देखते हैं कि इस संसार के अंदर सभी अच्छे नागरिक हैं, सभी अच्छे नागरिक सभी मनुष्य रहते हैं, पर सरकार को जो है हर जिले में, आप देखिए हर शहर में एक जेल की आवश्यकता है और जेल बनाई गई है। तो जेल क्यों बनाई गई है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको वहां दंड दिया जाता है और रखा जाता है। उसी प्रकार से हम सभी जीव कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी हमारी जो रचनात्मक व्यवस्था है, तो हम परम भगवान के अंश हैं। परम भगवान के अंश यानी भगवान परम हैं और हम उनके अंश हैं। तो अंश हम जीव के रूप में हैं और परम भगवान जो है, जब हम भगवान, हम सभी भगवान से संबंधित हैं। आप देखते हैं कि हम, हमारे भी माता पिता हैं, और हमारे माता पिता के अगर आप आगे देखने जाएंगे तो उनके भी माता पिता हैं, उनके भी माता पिता हैं। यानी इस पृथ्वी लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसके माता पिता हैं। तो इस तरह से अगर हम खोजते चले जाएं तो अंत में हमें हमारे जो परम माता पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के रूप में हैं। जैसा शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जो है सच्चित आनंद स्वरूप हैं और हम उनके एक छोटी सी आत्मा के रूप में हैं, वो परमात्मा हैं। परमात्मा और आत्मा, आत्मा का रूप लेकर के हम इस संसार में जीव के रूप में हम जन्म लेते हैं। तो हमारा संबंध अगर देखा जाए तो अपने परम माता पिता से ही रहता है, लेकिन जब हम वहाँ पे अपने कुछ स्वतंत्रता की दुरुपयोगिता करते हैं यानी भगवान के कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इस संसार में हम भेज दिए जाते हैं। जिस प्रकार से एक नागरिक को जो इस संसार में रहता है लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जिसकी वजह से उसको जेल में रखा जाता है। तो यहां पर देखिए बहुत समझने की बात यह है कि ये श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन क्यों आया। तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आने के पीछे अभी ये पूरी कथा के अंत में आप समझेंगे कि ये भागवत के अंदर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो इस जिस समय पृथ्वी लोक में महाराज परीक्षित का राज्य था और राजा परीक्षित राज्य करते थे, तो ये भगवान के बहुत ही परम भक्त थे, और परम भक्त होने के कारण जब इन्हें पता चला कि 7 दिन में हमारी मृत्यु निश्चित है, तो ये जब अपना राज्य सब कुछ छोड़ करके ये जानने के लिए निकले कि अब मुझे मेरे मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है और मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, जो हम इस भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम भी, हमारे मन भी ये प्रश्न होता है कि हम भी इस भक्ति के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर श्रीमद् भागवत के माध्यम से राजा परीक्षित हमें बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया और कहाँ प्राप्त किया, और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस तरह से हम अपने माता पिता को, जो हमारे ओरिजिनल शाश्वत माता पिता हैं, उनको छोड़ के हम कैसे इस दुनिया में और कहाँ कहाँ से भटकते हुए चले आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी अपना राज्य छोड़ करके जब गंगा के तट पर जाते हैं, तो आप लोग कभी भी हस्तिनापुर स्थान में गंगा जी के पास जाएंगे तो वहाँ पर सुक्ताल नाम की एक जगह है जहाँ पर पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा, महाभागवत सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो राजा परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्नों का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछे और यह सारे प्रश्न पूछते पूछते श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद पर जब जाते हैं तो जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न का वर्णन इन चार श्लोकों में किया गया है जो हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठ करके जब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे महाभागवत सुखदेव गोस्वामी, आप महाभाग्यशाली हैं और आपने सब कुछ भगवान से व्यासदेव जी से जो कथा सुनी है तो हमें भी थोड़ा सा बताइए ताकि हम अपने जीवन में भी उसको सुन करके अपने माता पिता के पास जा सकें और जहां हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि या किसी तरह का कष्ट न हो। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये जानना चाहते हैं तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को महाभागवत महाभाग्यशाली कहकर के कह रहे हैं। तो जनरली आप देख सकते हैं कि इस संसार में हम लोग अपनी सूक्ष्म दृष्टि से महाभाग्यशाली किसको समझते हैं, जो बहुत ज्यादा विद्या विभूषित होता है, पढ़ा लिखा होता है या जिसके पास बहुत धन ऐश्वर्य है, गाड़ी बंगला है, उसको हम समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत भाग्यशाली है। लेकिन आप साथ में यहां देखिए कि किसी के यहां पर सुखदेव गोस्वामी के पास न तो कोई गाड़ी बंगला है, न ही कोई विद्या विभूषण है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर उन्हें महाभागवत महाभाग्यशाली कहकर के संबोधित कर रहे हैं परीक्षित महाराज। तो इसमें प्रभुपाद जी दृष्टांत ये देते हैं कि ये जो भौतिक सुख है, ये भौतिक सुख तो हमें किसी भी तरह से मिल जाएगा लेकिन भगवान की भक्ति हमें कभी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, यहां पर परीक्षित महाराज खास सुखदेव गोस्वामी के विषय में ये कह रहे हैं कि आप महाभागवत हैं, यानी भगवान महाभागवत इसलिए हैं कि उनके पास भक्ति का भंडार है। सुखदेव गोस्वामी के पास भक्ति का भंडार है, स्वयं भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण स्वयं इस कलयुग में महाभागवत के रूप में आए हुए हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी बहुत बार जगह जगह पर ऐसा दृष्टांत देते हैं कि हम लोग जब आसक्त स्थिति में या बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और हमने स्वयं भी देखा है कि कई बार जो है मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब हमें जो है कैंसर हो गया है या इतनी बड़ी बीमारी हो गई है तो आप कुछ दवा की ऐसी व्यवस्था करिए जिससे मैं मुझे कुछ समय मिल जाए। लेकिन उसे एक पल भी, एक समय, एक मिनट भी, एक सेकंड भी नहीं मिलता है लेकिन वो फिर भी चूंकि मोहग्रस्त है तो वो याचना करता है कि मुझे कुछ समय दीजिए और उसके लिए जो धन चाहिए मैं देने को तैयार हूं। पर ऐसा होता नहीं है। तो यहां पे प्रभुपाद जी एक दूसरा उदाहरण ऐसे बहुत जगह देते हैं पर यहां पर भी वो उदाहरण देते हैं कि एक कुत्ता है। कुत्ता जो है जब पूर्व जन्म में वो कोई पाप कर्म करता है, मनुष्य जब पाप कर्म करता है तो वो कुत्ते की योनि में आता है। तो आप देखते हैं कि संसार की जो रचना है, जो प्रकृति की रचना है वो तीन गुणों से होती है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। तो हर व्यक्ति में आप देखते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अलग अलग नहीं होता है, ये हर व्यक्ति में हमेशा दो दो गुण मिल करके होते हैं, किसी में तमोगुण रजोगुण होता है, किसी में रजोगुण सतोगुण होता है, और किसी में सतोगुण रजोगुण होता है, और किसी में तमोगुण और रजोगुण होता है, और किसी में सतोगुण और तमोगुण होता है। तो ये कर्म की ग्रंथि इतनी जटिल है कि इसको जब तक हमारे ऊपर गुरु की कृपा भगवान की कृपा नहीं होगी हम इसे समझ नहीं सकते हैं। तो एक उदाहरण के स्वरूप में आप ये लीजिए कि एक कुत्ता है, जो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कुत्ते ने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए। पूर्व जन्म में कुत्ता जो मनुष्य था उसने उस समय कुछ अच्छे कार्य किए, लेकिन फल उसके बाद उसने कुछ पाप कार्य भी किए और फलस्वरूप उसे इस जीवन में कुत्ते का जन्म मिला। तो कुत्ते का जन्म मिलने के बाद वो कुत्ता और तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कुत्ते का जन्म भी उसको ऐसे ऐश्वर्यवान और बड़े व्यक्ति के धनी परिवार के बीच में जन्म मिला, जहां पर वो मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, बड़े बंगलों में रहता है और हर तरह के सुख हो उसके पास पर्याप्त है। और उसी सुख को पाने के लिए इस संसार में जब हमारे पास में थोड़ा सा धन होता है, थोड़ी सी विद्या होती है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, तो हम भौतिक संसार में ये सब चीजें अक्वायर करने के लिए कि हमें भी गाड़ी मिले, बंगला मिले और हम भी जो है धनवान बने, भाग्यवान बने। लेकिन यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाग्यवान वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये सब चीजें हैं, परम भाग्यशाली परम भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसमें कृष्ण है और कृष्ण की भक्ति है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस तरह से राजा परीक्षित जिस समय सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न पूछ रहे थे, तो ये कि हमें जो है ये सीधा सीधा सरल उपाय आप बताइए कि हम किस तरह से भगवान की भक्ति करें और ये नारकी लोगों की जो स्थिति है, हमें नरक में जाना, हमें जेल जाना जाने से कैसे बचा सकते हैं। तो इस संरचना के अनुसार आप देखेंगे कि पृथ्वी लोक ये बीच में है, इसके ऊपर जो है सात लोक जो ऊर्ध्व लोक हैं, जो ऊपर के लोक हैं, और जो अधो लोक हैं और नीचे के वो लोक हैं। तो अधो लोक में गर्भोदकशायी विष्णु, जो गर्भोदकशायी सागर है उससे थोड़ा सा बगल में ये सारे लोक हैं नरक लोक, जहां पे मनुष्य जब किसी प्रकार के पाप कर्म करता है तो उसे उस जगह पे रखा जाता है ताकि वह व्यक्ति वहां जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित करे। हम सब भक्तों को ये बात बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस संसार में पाप तो पाप है ही है, पाप करना पाप कर्म है, पर इसके साथ में पुण्य कर्म करना भी पाप से कम नहीं है। अब आपके अंदर ये प्रश्न आएगा कि पुण्य क्यों करने से पाप क्यों, पुण्य करने से क्यों ठीक नहीं है। तो जैसे मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया कि कुत्ते ने कुछ जो है पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में पाप कर्म भी किए और पुण्य कर्म भी किए, तो पाप का फल ये हुआ कि उसे कुत्ते की योनि मिली और पुण्य का फल ये हुआ कि ऐश्वर्यवान व्यक्ति के यहां उसने जन्म लिया। तो हमें भक्ति में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि भक्ति करते हुए हमसे किसी तरह का अपराध नहीं हो और पाप नहीं हो। तो इस विषय में परम भागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि पाप तो पाप है ही है, लेकिन पुण्य भी अगर भगवान के अनुसार न किया जाए तो उसका भी फल बहुत ही विपरीत होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां पर कि इस स्थान पर पुण्य करके जो है हम किसी अच्छे स्वर्ग लोक में जाएंगे और पुण्य का भोग करेंगे, लेकिन किस योनि में जाएंगे ये हमें पता नहीं। तो प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर सावधान करते हैं कि हमें वो कर्म करना है जो भगवान के द्वारा सर्टिफाइड हो, भगवान के द्वारा प्रमाणित हो, या जो भगवान पसंद करें, जो भगवान का प्रिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। आप मेडिकल स्टोर में कभी नहीं जाते हैं और जाकर के आप कहते हैं कि हमें इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, इसमें से जो हमारे लिए अच्छी हो वो दे दीजिए। आप ऐसा नहीं करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि हमें ये बीमारी है, ये तकलीफ है, और डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करके एक पर्टिकुलर दवा लिखता है, तो उन 1000 दवाइयों में से आपका प्रिस्क्रिप्शन देख के मेडिकल स्टोर में केमिस्ट आपको एक दवा देता है। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें पाप भी नहीं करना है और पुण्य भी नहीं करना है। ये सांसारिक लोगों का कार्य है कि वो पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं, पर भक्त के लिए ये पाप और पुण्य दोनों से हट करके जो कार्य भगवान के लिए करना है वो हमें करना है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या कर्म, अकर्म और विकर्म के रूप में दी गई है। कर्म यानी जो हम अनजाने में कर रहे हैं, विकर्म जो पाप पूर्ण कर रहे हैं, और अकर्म यानी जो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण भावनामृत जो संघ है इसमें हमें भगवान के सानिध्य में काम करने की विधि बताई जाती है, और यही हमारी साधना है, यही हमारा अभ्यास है। यहां पर एक उदाहरण हम पाप और पुण्य का और लेते हैं कि कोई व्यक्ति, सांसारिक व्यक्तियों में हम देखते हैं कि लोग समय समय पर, अभी जैसे कुंभ मेला चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि चलो हमने जो कुछ भी व्यवसाय में, हर कार्य में आप देखते हैं कि अभी जैसे मैंने ये श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि हम लोग जो है अपने घर परिवार गृहस्थ जीवन या परिवार या कुटुंब या अपने सुखी होने के लिए बहुत तरह के पाप करते हैं जाने या अनजाने में। तो यह सब पाप कर्म करते करते हमारे मन में बार बार, चूंकि यहाँ पे सतोगुण तमोगुण रजोगुण की क्रिया से हम जो है इन्फ्लुएंस हैं, तो हम जो है कभी हमारे मन में विचार आता है सतोगुण का, अभी हम तमोगुण में रह करके जो है लोगों को ठग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ समय करने के बाद में हमें लगता है कि नहीं, अब हमारे पास में बहुत धन आ गया है या थोड़ा धन आ गया है, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा हम पुण्य करके आते हैं। तो वृंदावन धाम जैसी जगह में या हरिद्वार में या प्रयाग में जा करके जो है तरह तरह के पुण्य कर्म करते हैं। तो पुण्य कर्म करने के लिए आप देखते हैं कि जैसे आप गंगा में जाके स्नान करिए, तो गंगा में जा करके स्नान करते हैं तो एक बार वो स्नान करके पाप को धो लेते हैं और वहां पर जो है या भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, गंगा माता से प्रार्थना भी करते हैं कि अब हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। लेकिन वो फिर वहां से आने के बाद में जो अपना उनका पूर्व कार्य था उस कार्य में फिर से लग जाते हैं और वही कार्य करने लगते हैं और इस तरह से फिर वो पाप करते हैं। तो उन्हें ये ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि हमने जो है अभी जाकर के हम जो है वहां पे क्षमा मांग करके आए, माफी मांग करके आए, लेकिन हम फिर वही कार्य कर रहे हैं। तो इसी बात को गहराई से समझने के लिए कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने और हमारे गुरु महाराज ने और हमारे ये जो भक्त हैं और भक्तों के बीच में हम ये इस संघ में बैठ करके, इस समूह में बैठ करके हम इसका अनुभव करते हैं कि हमें नहीं नहीं हमें जो है पुण्य भी नहीं करना है, ऐसा भी पुण्य नहीं करना है जो हमें फिर से जो है सांसारिक बंधन में बांध दे या उस तरह के कार्य करने। और हम देखते हैं कि हमारे जो भक्त हैं ये कभी भी ऐसे कार्यों में या कृष्ण भावनामृत या जो व्यक्ति 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, इनको ऐसे कार्यों में कोई टेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है कि वो प्रयागराज जाएं, गंगा स्नान करें, ये करें वो करें, नहीं, उनके बस एक निष्ठ भक्ति करते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं और भगवान से नित्य प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति इसका जिसको यह ज्ञान नहीं है वो भी इस ज्ञान को स्वीकार करे और इस जगह पर आए। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत सुंदर कथा हम लोग बहुत बार बहुत से भक्तों के मुख से सुनते हैं, पर उस आज मैं भी इस उसी कथा को अपने माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा जो हमने गुरु महाराज से सुना है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कहते हैं कि ठीक है, ये सब नारकी लोगों के बारे में आपने बताया और पाप और पुण्य के बारे में बताया, तो पाप और पुण्य ये दोनों ही चीजें ठीक है हम नहीं करेंगे, आज से हम छोड़ देते हैं, संकल्प लेते हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन जो पाप हम पहले कर चुके हैं उसका क्या होगा? तो हम क्या फिर से नरक लोक में उसकी यातना भोगने के लिए जाएंगे या हमें करना पड़ेगा, कैसे होगा? भक्तों आप देख सकते हैं कि जो पाप कर्म है, जो पाप की वृत्ति होती है, वो किसी माध्यम से, जैसे आप सोचें कि हमने कोई पाप कर्म किया है और हम जो है कोई पुण्य करके आए, जैसे इस व्यक्ति का मैंने बताया कि गंगा जी में जाके स्नान करके ये सब, तो ऐसे हम पाप और पुण्य को, पाप कर्म को पुण्य कर्म करके कभी भी आप काट नहीं सकते हो। इसको आप डायरी में लिख के लीजिए, पाप कर्म को पुण्य कर्म से कभी भी काट नहीं सकते हैं, कभी भी साफ नहीं कर सकते, उसकी सजा होनी ही होनी है निश्चित रूप से। लेकिन आप देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रकृति से इन्फ्लुएंस होकर के, और अक्सर ये ऐसा होता है कि आप अखबारों में, न्यूज, टीवी में सब जगह सुनते हैं कि फला गांव में, फला शहर में, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने गोली मार दिया किसी को और वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और वो व्यक्ति अरेस्ट होने के बाद जाकर के तुरंत अपने को आत्मसमर्पण कर देता है वहां पर पुलिस के सामने और कहता है कि नहीं, मुझसे ये गलती हो गई। और हम सब भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि कई बार हम बहुत से ऐसे गलत कार्य या पाप कर्म कर बैठते हैं और तुरंत हमें एहसास भी होता है कि अरे हमने ये पाप कर्म कर दिया। तो ये एहसास हमें कैसे होता है कि हमने पाप कर्म कर दिया, अरे हमें नहीं करना चाहिए था? तो जब आपके अंदर वर्तमान आचार्यों द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, कृष्ण भावनामृत समूह में बैठ करके आप देखेंगे कि जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे 16 माला का और 4 नियम का पालन करेंगे, तो ये चीजें हमारे धीरे धीरे इसकी निवृत्ति होती जाएगी, यानी ये जो अनर्थ है धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और हमारे अंदर जो माया के प्रभाव से पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो पाप करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर से नष्ट हो जाएगी, इसके लिए बहुत सावधानी से आपको यह समझना होगा कि इसके लिए बहुत सारी विधि अलग अलग युग में, अलग अलग समय में, अलग अलग तरीके से बताई गई है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे महाभागवत, आप कहते हैं कि ठीक है हम जो है कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे और पुण्य भी नहीं करेंगे और सब कुछ करेंगे, और जो आप कह रहे हैं यम, नियम, तप, तपस्या और इंद्रिय निग्रह, ये सब कार्य करेंगे, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ की यह प्रार्थना है कि जिस समय कलियुग आएगा, और इस समय कलियुग चल रहा है, गणना के अनुसार कलियुग इस समय हमारे घुटने तक है और कितने पाप कर्म इस समय हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि इतने पाप कर्म इस समय हो रहे हैं कि बाहर की स्थिति इतनी भयंकर है कि हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है इस समय दुनिया में। अभी बहुत जल्दी ही हमारे बहुत करीबी दोस्त की शादी हुई, और शादी होने के बाद में वो लड़का नेवी में था, नेवी के अंदर वो मरीन पानी की जहाज में कैप्टन था वो, और वो जा रहा था, उसकी वाइफ को वीजा नहीं मिला था, तो उसका वीजा की यहां तैयारी हो रही, अगले 15 दिन में उसकी वाइफ को जाना था उसके साथ। और वहां पर कैप्टन दो रहते हैं, एक असिस्ट करने के लिए, एक उसको मेन रहता है हैंडल करने के लिए। तो उसमें जो है उसको क्या, उसको उस कैप्टन का किसी के साथ में थोड़ी बातचीत हो गई टेक्निकल इंजीनियर से, और वो टेक्निकल इंजीनियर ने रात के वक्त उस कैप्टन को खाना खाने के बुलाने अपने केबिन में बुलाया, और बुला करके उसने उसकी वहां हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जब उसकी जांच हुई और वो इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उसने तुरंत अपने को उसने सारी बात एज इट इज बता दी कि उसके दिमाग में क्या आया और क्यों उसने हत्या की। और वो क्षमा की याचना करने लगा, माफी मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भक्तों, ऐसे रोज घटनाएं घट रही हैं मनुष्य जीवन में। तो हमारे संघ का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम सब इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके उन परिवारों को, उन लोगों को बचाएं जो इस तरह से माया के इन्फ्लुएंस में गलत जा करके और माया के प्रभाव से गलत कार्य कर बैठते हैं। और हम भक्त होते हुए भी कई बार हम भी कर बैठते हैं ऐसे। तो परीक्षित महाराज यहां पे कह रहे हैं कि ये सब साधन विधि इस कलयुग में पालन करना, हे महाभागवत, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, पर हम कैसे इसका पालन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, भगवान का नाम कलयुग में इतना प्रभावशाली होगा कि सिर्फ नाम लेकर के वह इन सब सारे कष्टों से, नारकी जीवन से, नारकी लोकों से बच जाएगा और भगवत धाम चला जाएगा। तो नाम महामंत्र के रूप में बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि एक बार नाम, तो बोले हां एक बार। तो बोले राजन, एक बार जागृत अवस्था में ही नहीं, अगर स्वप्न में भी एक बार नाम ले लेगा तो भी वो जो है भगवत धाम चला जाएगा। तो परीक्षित महाराज कहे, बोलने लगे कि अरे एक बार, हम तो 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, और जो हमें आचार्यों ने शिक्षा दी है उसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो एक बार नाम कैसे हो सकता है। तो भक्तों ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 5 मिनट की कथा और है, मैं समय पे खत्म करूंगा। यहां पर जो है परम भागवत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सिर्फ एक बार। तो कहते हैं राजा परीक्षित, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक बार, और हम सब भक्तों को भी शायद विश्वास होता होगा, एटलीस्ट मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस कथा के माध्यम से 100% आपका विश्वास होएगा ऐसी मेरी आशा है, और मैं भी उस पर प्रयत्न करूंगा उस तरह से समझने का। कथा सुंदर बहुत रोचक कथा है। यहां पर महाभागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि मैंने ये कथा बहुत गुहेतम तरीके से, मुझे एक बार की बात है, इस प्रश्न को जब मैंने कुंभक ऋषि अगस्त मुनि से पूछा, तो अगस्त मुनि मलय पर्वत पर आसन लेकर के बैठ गए और वहां पर साक्षात नीलाचल भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रेजेंस में, भगवान जगन्नाथ जी नीलाचल के रूप में वहां विद्यमान थे, और उनके चरण को छू करके अगस्त मुनि सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं ये बात कि एक बार भारतवर्ष में कान्यकुब्ज एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। कान्यकुब्ज गांव जो है आज भी आप देख सकते हैं कि ये कानपुर के पास में कन्नौज नाम से विख्यात है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन कान्यकुब्ज के नाम से आता है। तो कानिकुब्ज गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, लेकिन उसका संपर्क एक वैश्या से हो गया, और संपर्क एक वैश्या से होने के बाद वो सारा पाप कर्म करने लग गया। सब तरह के जो भी जितने भी पाप कर्म आप देख रहे हैं इस दुनिया में हो रहा है, हर तरह के पाप कर्म करने लगा, और भक्तों के प्रति तो बहुत ज्यादा करता था। और चूंकि वैश्या से उसका संबंध था, तो आप जानते हैं कि वैश्या का कोई पति नहीं होता, पर वो उसे अपनी पत्नी के रूप में मानता था और वैश्या उसको अपने पति के रूप में एक बार मान ली हो। तो यहां पर कुंभक ऋषि जो है, यहां पर कुंभक ऋषि अगस्त मुनि बता रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये व्यक्ति जो है वैश्या का संग करके, देखिए भक्तों बहुत जरूरी बात है कि हम संग किसका करते हैं। संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस वैश्या के संग में आकर के एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के सारे कार्य करता था, वो आज की तारीख में सारे पाप कर्म करने लग गया, और सारे पाप कर्म करते करते वो उसकी बहुत समय बीत गए। 88 साल की उम्र में उसको एक पुत्र पैदा हुआ, और वो पुत्र पैदा हुआ, उसका पुत्र में बहुत ज्यादा आसक्ति थी। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसका नाम ले रहे हैं। ये जो ब्राह्मण था उसका नाम था अजामिल। अजामिल का अर्थ समझते हैं आप लोग? अजामिल का अर्थ है अज मतलब माया, मिल मतलब मिल जाना, माया में मिल जाना। तो अजामिल भक्तों, ये अजामिल की कथा नहीं है, हम सभी में अजामिल, हम सब भी अजामिल हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो कथा का सारांश ये है कि यहां पर अजामिल जो है वैश्या के साथ रहने लगा, और 88 वर्ष की उम्र, यानी जहां पे जीवन खत्म होता है, 88 साल की उम्र में इसको पुत्र पैदा हो रहा है। आप समझते हैं बुढ़ापे में व्यक्ति नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि हम अभी जीवन में अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में काम वासना इतनी तेज होती है कि और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो भक्तों यहां पर जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि मुनि ऐसा, अगस्त मुनि ऐसा कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो है वैश्या के साथ रहने लगा, और एक पुत्र पैदा होता है, और उस पुत्र को लेकर के ये बहुत प्रसन्न होता है। और एक दिन वो अपने घर से कहीं बाहर जाता है पाप चोरी करने, कहीं से धन लूट करके लाएंगे क्योंकि उनका भरण पोषण करना है, तो धन लूटने के लिए बाहर जाता है। इतने में कुछ भक्त लोग वहां पर उस गांव में आ जाते हैं। तो भक्त लोग आते हैं, तो भक्त लोग बहुत दूर से चल के आते हैं, तो कुछ बच्चों से वहां कुछ बच्चे मिलते हैं, और बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई भक्त रहता है, हमें बहुत भूख लगी है और हमें कुछ प्रसाद चाहिए। तो बच्चे उससे मजाक करते हैं, मजाक में उसको भक्तों को बच्चे भक्तों को कहते हैं कि यहाँ पास में ही एक अजामिल प्रभु रहते हैं, उनके घर चले जाओ, वहां तुम्हें प्रसाद मिलेगा अच्छा। क्योंकि ये बच्चों को पता था कि वो तो महादुष्ट और बदमाश आदमी है, वो भक्तों को पीटेगा और इनके मृदंग करताल सब छीन लेगा। तो बच्चों ने ऐसे कह दिया जस्ट उनके स्वभाव से। तो ये जो है भक्त लोग चले गए वहां पर, लेकिन सौभाग्य की बात की उस वक्त वहां पर वो अजामिल नहीं था, ब्राह्मण वो नहीं था घर में। तो भक्त लोग जब वहां गए तो उन्होंने आवाज लगाया, तो उसकी पत्नी जो वैश्या थी वो बाहर आई। तो भक्तों आप देखिए कि भक्तों के दर्शन मात्र से कितनी शुद्धता तुरंत होती है। गंगा जी में या कितने पुण्य कर्म करके आप बहुत कुछ कार्य करके बहुत कुछ पा लेते हैं, देखते हैं कि उससे जो है आपको कुछ धन दुनिया की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन भगवान और भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। उसी प्रकार से और भक्त का एक दर्शन कर लेने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ पे आप इस दृष्टांत से समझेंगे कि भक्त जो है, भक्तों का वहां जाने से वैश्या के अंदर थोड़ा परिवर्तन हुआ, तो सोचती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, तुम लोगों को प्रसाद चाहिए तो हम देते हैं। तो भक्तों ने उनसे कच्चा सीधा लिया। कच्चा सीधा मतलब किसी के हाथ का वो बना नहीं लेते, आप कुछ अन्न उन्हें दे दो, अपने आप से बनाएंगे और प्रसाद लेंगे। तो भक्तों ने अपने हाथ से वो अन्न ले लिया और लेकर के उसका प्रसाद बनाया और बना के बाद उसका ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद में वो लोग चलने लगे। तो चलने लगे तो उन्होंने वैश्या को बुलाकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने प्रसाद खिलाया, तो हम अब जाते हैं। तो उसने उन्होंने देखा, भक्तों ने देखा कि इसके गोद में एक पुत्र है, तो उन्होंने पूछा ये पुत्र किसका है। तो वैश्या कहती ये पुत्र हमारा है। तो बोले इसका क्या नाम रखा है। तो उसने कहा इसका नाम नारायण रखा है। नहीं, उसने कहा कि इसका नाम हमने अभी नामकरण नहीं किया है। तो भक्तों ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका नामकरण कर दें। तो चूंकि उसके हृदय में थोड़ा परिवर्तन हो गया था भक्तों के प्रति दर्शन मात्र से, तो कहते हैं कि ठीक है इसका हम नाम रख देते नारायण। तो उन्होंने नारायण रख दिया और नारायण कह करके चले गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। और चले गए। इतने में वो ब्राह्मण आया अजामिल। तो अजामिल जैसे ही आया तो उसको रास्ते में पता चला कि हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण भक्त आए हुए हैं। तो सोचा कि चलो अब इनको मार करके, इनको लूट करके, इनका जो कुछ इनके पास धन वन होगा ले लेंगे। पर आया तो घर पे देखा कि कोई नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कोई आया था। बोले हाँ कुछ आए थे वो लोग, भक्त लोग, वो लोग चले गए। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर उसमें उसको अपने बच्चे में बहुत आसक्ति थी। तो उसने अपने गोद में जब बच्चे को लिया था तो बच्चे को देख करके वो अजामिल कहता है कि लाओ इस बच्चे को मेरी गोद में दे दो। तो उसकी पत्नी यानी वैश्या अपने पति से कहती है अजामिल से कि सुनो सुनो अजामिल, आज एक नई बात, जो ये भक्त लोग आए थे इन्होंने मेरे बेटे का नाम रख दिया। बोले क्या नाम रख दिया। बोले नारायण। तो नारायण उसका नाम रख दिया। अब ये सोते बैठते उठते खाते पीते हर वक्त नारायण 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 बोलने लगा। और जैसे ही अंत समय आया इस अजामिल का और ये शरीर छोड़ना हुआ, तो देखिए इसने भगवान को नहीं बुलाया, इसने भगवान को नहीं बुलाया, इसकी आसक्ति अपने पुत्र में है, लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। और नारायण रखने की वजह से नारायण कह करके इसने पुकारा। और जैसे ही नारायण कह करके पुकारा तो मृत्यु के समय वहां से यम के दूत ना आकर के वैष्णव, वहां से भगवान के दूत आए, और भगवान के दूत आकर के अजामिल को अपने धाम भगवत धाम लेके जाते हैं। इसी तरह से भक्तों, यदि हम जाने अनजाने या किसी भी रूप में अगर भगवान के नाम का एक बार देखिए, एक बार का यहाँ पे उनको सत्यापित करना था, प्रूफ करना था सुखदेव गोस्वामी को, तो बता रहे हैं कि एक बार अजामिल ने खाली नाम लिया था अपना नारायण का, लेकिन यह खाली नाम सुन करके, इस कलयुग में नाम की प्रभाव बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों हम आपसे निवेदन, हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि ये भक्त का, ये भगवान का नाम इतना प्रभावी है कि इस नाम को सिर्फ उच्चारण करके, 16 माला का जप करके निश्चय ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं और नारकी जीवन से बच सकते हैं, नारकी लोकों में जाने से बच सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।